छोटी 4 वर्ष की आयु से अपने माता पिता के साथ इस विद्यालय के साथ जुड़े और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा को आपने शुरू किया। सिंस 1979 और 1992 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माउंट आबू के मुख्यालय पांडव भवन में आप हमारा जो बहुत ही विशेष डिपार्टमेंट है, जिसको हम टोली डिपार्टमेंट कहते हैं, जहां पर ईश्वरीय प्रसाद बनता है, उसके आप इंचार्ज हैं और साथ साथ जो भी सेवाधारी आते हैं उनका मैनेजमेंट भी आप देखते हैं। आप 1996 से युवा प्रभाग से जुड़े और वर्तमान समय आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर ऑफ यूथ विंग के रूप से सेवाएं दे रहे हैं। हेडक्वार्टर्स में जितनी भी यूथ की सेवाएं होती हैं उसका पूर्ण रूप से संचालन, उसको सुचारू रूप से कार्यान्वित करने में आपका अहम भूमिका होती है। आप स्पिरिचुअल सर्टिफाइड काउंसलर हैं और आप वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको ऑनर किया गया है, एज अ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की स्वीकृति से भारत गौरव रत्न श्री सम्मान अवार्ड से भी सम्मानित हैं और इसके साथ साथ आप ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट कमीशन के सक्रिय सदस्य हैं। आपको 2021 में कोरोना काल में समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य करने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट भी प्राप्त हुआ। ऐसी कई सारी उपलब्धियां आपको अपने जीवन में प्राप्त हैं। आगे आने वाले दिनों में और भी हम आपसे लाभान्वित होंगे, तो मैं मंच पर जीतू भाई को आमंत्रित करती हूं आगे का कार्यक्रम संचालित करने। जीतू भाई,
कुछ बात है इस महफिल में जो सबको खींच लाती है। हर लम्हा यहां नई कहानी लिख जाती है। ओम शांति, गुड इवनिंग। थोड़ा जोश कम लग रहा है युवाओं का, गुड इवनिंग। आप सभी का आज के इस इनॉग्रल सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे जो आदरणीय महानुभाव है, जो स्पीकर्स है, उनसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे प्लीज। माननीय डॉक्टर निरंजन पटेल जी, जो वाइस चांसलर है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विद्यानगर से, हमारी परम आदरणीय सुदेश दीदी जी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, चेयरपर्सन यूथ विंग, आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, वाइस चेयरपर्सन यूथ विंग, आदरणीय कृति बेन जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ विंग, सिस्टर ईशा अग्रवाल, इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन, और ब्रदर आलोक अग्रवाल जी जो सोशलिस्ट है, सभी से निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे प्लीज। जहां राष्ट्र की मिट्टी में आत्मा बसती है वहां हर सांस तपस्या बन जाती है, तो यह सम्मेलन आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता दोनों का संगम है। इस सम्मेलन में राष्ट्रवाद और अध्यात्म दो रास्ते नहीं है, लेकिन एक रास्ते के दो चरण हैं। तो यहां बैठकर हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए योजना बनाएंगे जो अंदर से भी सशक्त हो, समृद्ध हो, और बाहर से भी सशक्त हो। तो आए ऐसे हमारे भारत माता के लिए एक बार दिल से सभी कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो जोश से भरी है युवा ऊर्जा अगर आध्यात्मिकता के साथ मिल जाए तो ये जो सशक्त भारत का सपना केवल सपना नहीं रहेगा लेकिन हकीकत में साकार हो जाएगा। तो आइए इसी उद्देश्य से इस सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को। सुमन बेन यूथ विंग से, नागरत्ना बेन बेलगांव से यूथ विंग से है, हमारे माननीय महानुभावों का पुष्प किताब बुक और बैज देकर सम्मानित करेंगे। हमारे ब्रह्मा कुमारी बहने और आमंत्रित करता हूं हमारे मधुरवाणी ग्रुप को भी। हर दिन एक नया अवसर है, हर दिन एक नया अवसर है, नई अपॉर्चुनिटी भी है और नया अनुभव भी है। तो आज हम इस सम्मेलन के माध्यम से भी हमारे जीवन में नई अपॉर्चुनिटी और नई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम अनुभव करेंगे। कहते विकास तब होता है जब हम अपने मूल से जुड़े रहते हैं, और यही हमारी आज की थीम है, स्ट्रेंथनिंग योर इनर रूट्स, स्पिरिचुअल रूट्स। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। आप सभी ने बांस की कहानी सुनी होगी, किसी ने सुनी है बांस की कहानी? जो बांस होता है, बांस के जब बीज बोए जाते हैं तो बीज 5 साल तक जमीन के अंदर ही रहते हैं। देखने वालों को लगता है, व्यक्तियों को लगता है कि इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, लेकिन 6वें साल में बांस इतना तेजी से बढ़ता है जो कुछ ही हफ्तों में 60 से 70 फीट तक बढ़ जाता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है कि बांस की जो सबसे तेज बढ़ने वाली प्रजाति है वो हर घंटे में 1.5 इंच बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 6 हफ्ते में उसकी ग्रोथ हुई है, उसकी ग्रोथ वो जो 6 साल वो जमीन के अंदर अपने रूट्स को मजबूत करने में रही, वही उसकी ग्रोथ है। तो इसी ग्रोथ को, इसी स्पिरिचुअल रूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम सभी यहां एकत्रित आए हैं। तो इन शब्दों को गीतों के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए आए हैं हमारे मधुरवाणी ग्रुप। हम सभी तालियों से, करतल ध्वनि से हमारे मधुरवाणी ग्रुप का स्वागत करेंगे और उनसे सुमधुर बोल हम सुनेंगे।
ओम शांति। फिर से एक बार ओम शांति। वैसे आज दो ही लोगों का ग्रुप है, वैसे हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है मधुरवाणी ग्रुप, कुछ सिंगर्स डाउन टू हिल शांतिवन जो सबसे बड़ा कैंपस है वहां पे भी है, और जो हमारे ग्रुप के लीडर है बीके सतीश भाई जो गीत लिखते हैं, लगभग 50 वर्षों से इस ईश्वरी विद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं। तो आज किसी कारण से वो अहमदाबाद गए हैं, तो आज वो हमारे बीच में यहां पर नहीं है, तो ये गीत उन्होंने ही लिख के दिया हुआ है खास आप लोगों के स्वागत के लिए। तो स्वीकारिए स्वागत दिल से। आओ युवाओ आपका प्रभु आह्वान करते हैं, आओ युवाओ आपका प्रभु आह्वान करते हैं, हम ज्ञान सरोवर में स्वागत सम्मान करते हैं, हम ज्ञान सरोवर में स्वागत सम्मान करते हैं। तालियां बजती रहे, लगना चाहिए युवा प्रभाग आया है। La 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 la। आध्यात्मिकता जीवन में भरती है पवित्रता, खुद से मिलाती मन में लाती है एकाग्रता, आध्यात्मिकता जीवन में भरती है पवित्रता, खुद से मिलाती मन में लाती है एकाग्रता। निश्चिंतता निर्भयता की हम खान भरते हैं, आध्यात्म मूल्य से जीवन आलीशान करते हैं, आध्यात्म मूल्य से जीवन आलीशान करते हैं। अध्यात्म का मतलब नहीं घर बार त्यागना, बाहर को भागना नहीं अंतर में झांकना। अध्यात्म का मतलब नहीं घर बार त्यागना, बाहर को भागना नहीं अंतर में झांकना। आंखें बंद करने को न ध्यान कहते हैं, आंखें खोल जग जाने को ही ध्यान कहते हैं। आंखें खोल जग जाने को ही ध्यान कहते हैं। ला 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 ला। आध्यात्मिक मूल्यों से जीवन के मूल को सींचिए, राजयोग के राजमार्ग से मन इच्छित पर लीजिए। आध्यात्मिक मूल्यों से जीवन के मूल को सींचिए, राजयोग के राजमार्ग से मन इच्छित पर लीजिए। लाखों युवा सफलता का अनुपान करते हैं, भगवान भी युवाओं का गुणगान करते हैं। भगवान भी युवाओं का गुणगान करते हैं। आओ युवाओ आपका प्रभु आह्वान करते हैं। आओ युवाओ आपका प्रभु आह्वान करते हैं। हम ज्ञान सरोवर में स्वागत सम्मान करते हैं। हम ज्ञान सरोवर में स्वागत सम्मान करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई और ग्रुप, और सतीश भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतना सुंदर गीत हमें लिख के दिया। हमारे बीच हमारे अतिथि श्री आलोक अग्रवाल जी पहुंचे हैं। निवेदन करता हूं हमारी बहनों से कि आलोक भाई जी का भी स्वागत करेंगे बैच के साथ में। ये आज का ये जो सम्मेलन अपने आप में एक विशेष सम्मेलन है, इसलिए भी कि 1985 से जब से युवा प्रभा की शुरुआत हुई, तब से हमारे परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी जो युवा प्रभा की अध्यक्षा रही, उन्होंने पिछले दो मास पहले ही 5 तारीख को ही अपना देह त्याग किया। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, मंचासीन अतिथि से भी और आप सभी से भी, हम सभी खड़े होकर हमारी परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी को, जो युवा प्रभा की अध्यक्षा भी रही और जब से ब्रह्मा कुमारीज की शुरुआत हुई तब से ब्रह्मा कुमारीज में ब्रह्मा बाबा के साथ ही ये पालना का कार्य, स्थापना का कार्य करते आए हैं। और अभी अभी उन्होंने 2 मास पहले शरीर छोड़ा है, तो परमात्मा स्मृति के साथ में हमारी आदरणीय दादी जी की पावन स्मृति में हम 2 मिनट अपना शुभकामनाओं का दान देंगे। ओम शांति। थैंक यू। इस शांति के प्रकंपन के साथ, इस आध्यात्मिकता के प्रकंपन के साथ मैं विशेष आमंत्रित करता हूं हमारी आदरणीय कृति दीदी जी, जो युवा प्रभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और साथ साथ दीदी जी ने शुरू से 85 से जब से युवा प्रभा की सेवाएं शुरू हुई तब से प्रभाग में सेवाएं दी है, दूसरों को प्रेरित किया है, अनेकों कैंपेन्स किए हैं, अनेकों ट्रेनिंग्स किए हैं, अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर पॉजिटिव कोर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट आदि आदि अनेक टॉपिक्स पर अपने व्याख्यान भी दिए हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए हैं, और विशेष युवा प्रभाग में जो सेवाएं चलती है, जो कैंपेन्स चलते हैं, तो शुरू से लेकर कैंपेन के संपन्नता तक दीदी का उसमें सक्रिय रोल रहता है और उसको संपन्नता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी दीदी अपने कंधे पे लेते हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय कृति दीदी जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आकर हमें इस सम्मेलन के प्रति गाइड कीजिए, अपने थीम के बारे में भी स्पष्ट करेंगे और सभी का स्वागत भी करेंगे। आदरणीय कृति दीदी जी।
ओम शांति। आज आप सभी को इस इतने सुंदर से सेराइन एटमॉस्फेयर में इतनी रुचि से आध्यात्मिक विषयों को लेकर के होने वाले कार्यक्रम में पहुंचा हुआ देखकर के सच ही हम सभी को बहुत बहुत खुशी है। और ये आप और हम सभी का सौभाग्य है जो इतने सुंदर कार्यक्रम से जीवन के एक अलग ही दिशा निर्देश और मोड़ की तरफ ले जाने के लिए हमने स्वयं को अग्रेसर किया है। आज इस नेशनल रिट्रीट फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर स्पिरिचुअल रूट्स, इस विषय को लेकर के हम 3 दिन आपस में कुछ चर्चा विचार करेंगे, कुछ विचारों का आदान प्रदान करेंगे और इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए आज हमें बहुत बहुत प्रेरणादायी गेस्ट भी हमें मिले हुए हैं। आज इस रिट्रीट के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत हम सबके बहुत प्रिय, हम सबकी ऊर्जा के स्रोत ऐसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत दिल के प्यार से आह्वान करती हूँ। ब्रह्मा कुमारीज की जॉइंट डायरेक्टर आदरणीय सुदेश दीदी जी भी बहुत जल्दी हम सबके बीच पहुंचेगी। आपका भी अभी सूक्ष्म सुदेश दीदी जी हम सबके बीच पहुंची हुई हैं और हम सभी बहुत बहुत सम्मान सहित आदरणीय सुदेश दीदी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप इस कैंपस की सीनियर डायरेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं, साथ ही आज इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर निरंजन भाई जो गुजरात आनंद से चलकर हम सबके बीच पहुंचे हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हैं और बड़ी विनम्रता से आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आपने सहर्ष निमंत्रण को स्वीकार किया, आपका भी मैं बहुत बहुत हार्टी वेलकम करती हूँ। ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग को जिन्होंने सदैव नेतृत्व प्रदान किया है और 1985 से लाखों युवाओं के जीवन में जिन्होंने एक नई दिशा दी है, ऐसी यूथ विंग की चेयरपर्सन आदरणीय चंद्रिका दीदी जी को भी आज इस मंच से स्वागत करते हुए दिल गदगद हो रहा है। अन्य दो विशेष मेहमान जो हम सबके बीच हैं, एक है बहन ईशा अग्रवाल जी जो कि काफी कॉन्टेस्ट ब्यूटी को लेकर के विन कर चुकी है, मिस वर्ल्ड का टाइटल भी आपको 3 बार मिल चुका है, और ऐसी एक विशेष प्रतिभा हम सभी जानते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हर प्रकार की कैपेसिटी वाली या हर प्रकार से एक हाइट वाली सोल्स को ही सिलेक्ट किया जाता है और ऐसी एक विशेष सोल हम सबके बीच उपस्थित है। आपका भी मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। साथ ही एक और अन्य विशेष मेहमान हम सबके बीच में है, ब्राता आलोक अग्रवाल जी, जिनकी 50 से अधिक देशों में एनजीओस है। ऐसे एक बिजनेसमैन जिन्होंने अपने कार्य को बहुत बेहद विशाल रूप से एक्सपांड किया और इतने कारोबार को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप हम सबके बीच हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत इस मंच से स्वागत करती हूँ। आज हम सबके बीच युवा प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश जी भी मंच पर उपस्थित हैं। मैं आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ साथ जो यूथ विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और आज के कार्यक्रम का मन संचालन कर रहे हैं, मैं आपको भी दिल से स्वागत कर रही हूँ। सभा में बैठे हुए आप सभी परमात्मा के बहुत चुने हुए रतन, जिनों को इस कार्यक्रम में आने के दिल से प्रेरणा हुई और देश के कोने कोने से इतनी लंबी जर्नीज करके अपनी छुट्टियां लेकर के इस कार्यक्रम से खुद को लाभान्वित करने के लिए पहुंचे हैं, आप सभी डेलीगेट्स का नाम सहित मैं बहुत बहुत पूरी यूथ विंग की टीम से वेलकम करती हूँ। सभा के बीच यूथ विंग के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमारे सीनियर जूनियर कमिटी मेंबर्स भी उपस्थित हैं। बहुत एफर्ट्स लगा करके इस कार्यक्रम को इन्होंने इतना सुंदर डिजाइन किया है, मैं आपको भी अग्रिम स्वागत भी करती हूँ और अभिनंदन भी देती हूँ। आज की ये रिट्रीट, इसका विषय बड़ा आध्यात्मिक विषय है और सामान्य रूप से युवा अवस्था में हम आध्यात्मिकता और रिलीजन इन दो बातों को मिला लेते हैं। सभी धर्मों की जो सबसे उच्च अवस्था है वो है आध्यात्मिकता। सभी धर्मों के मूल में वैल्यूज है, सभी धर्मों के मूल में मोरल और एथिकल लाइफस्टाइल है और स्पिरिचुअलिटी हमें उस दिशा में अपने सभी कार्यकलापों को करते हुए भी अपनी जिम्मेवारियों के साथ संतुलन बनाते हुए भी एक नई जीवन पद्धति लाइफस्टाइल अपनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। और इसका सबसे बड़ा हमारे डे टू डे लाइफ में फायदा ये है कि आज की चैलेंजेस वाले समय में चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए हमें जो इनर पावर्स चाहिए, ये पावर्स स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के जरिए हमारे जीवन में सहज अनुभव होते हैं। हम सभी जानते हैं आज का समय टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत बड़ी डेवलपमेंट का समय है। हम हाथ में एक छोटे से मोबाइल को लेकर सारे विश्व को अपने हाथ में ले लेते हैं, सारे विश्व की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। इससे और आगे बढ़कर आज एआई का जमाना आ रहा है, कॉलिंग हो रही है। आप देखिए विज्ञान कहाँ से हमें कहाँ ले गया है, लेकिन इन सब एडवांसमेंट्स और टेक्नोलॉजी के बीच आज युवावस्था में अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो है हमारे मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के विकास की। छोटी छोटी चुनौतियों में आज सुसाइड्स, डिप्रेशंस ये एक सामान्य चीज बनती जा रही है। पहले के जमाने में कितने भी चैलेंजेस होती थी, लोग उसे फेस करने के लिए सक्षम होते थे। ये सक्षमता, ये मानसिक शक्तियां, जैसे हम दूसरे शब्दों में धैर्यता, पेशेंस कह सकते हैं, इनर स्टेबिलिटी कह सकते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस के बीच एक बैलेंस की कला कह सकते हैं, ऐसी बहुत सारी मानसिक शक्तियों का विकास हमें आध्यात्मिक जीवन पद्धति देती है। और आज इसीलिए एक बहुत आध्यात्मिक विषय रूट्स, ये हमारे जीवन का मूल है, मूल तत्व है, हमारी ओरिजिनलिटी की बात है। तो ये रिट्रीट के दौरान हम अपनी ओरिजिनलिटी को पहचान करके हमारे अंदर सुषुप्त डॉर्मेंट जो इनर पावर्स है, हमारे अंदर सुषुप्त जो शक्तियां हैं, जिन्हें लेकर के हम आगे चलकर हमारे जीवन को बहुत सफल बना सकते हैं, ऐसी कुछ बातें हम ये 3 दिन के दौरान हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए हम सुनेंगे, सोचेंगे, इस पर चर्चा विचारणा भी करेंगे। और इसीलिए 3 दिन का जो कार्यक्रम डिजाइन किया गया है, इसमें वैरायटी एक्टिविटीज है। कुछ आपको सेशंस दिए जाएंगे, जिन सेशंस में हमारा जो विषय है, इस विषय के तह तक आपको ले जाया जाएगा। 2 दिन हम लोग वर्कशॉप्स करेंगे। आप लोगों के पास जो बेज मिला है, ये हर एक के बेज में एक एक साइड में वैल्यू लिखी हुई है। ये वैल्यू आपके ग्रुप का नाम है। ऐसे 20 ग्रुप्स बने हैं और ये ग्रुप्स में 2 दिन वर्कशॉप्स की जाएंगी, जिसमें आपको भी अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। एक बहुत सुंदर हेप काफे 2 दिन आपको मिलेगा। चाय के टेबल पर, चाय पे चर्चा हम कुछ विषयों पर करेंगे। कुछ आपके मेडिटेशन सेशंस रहेंगे और रोज सुबह 7 से 8 स्पेसिफिकली मेडिटेशन को सिखाने वाले 3 सेशंस 4 सेशंस आपको 4 दिन में मिलेंगे। वैरायटी टाइप के कार्यक्रम के साथ इस रिट्रीट को डिजाइन किया गया है, ताकि आप यहाँ से अपने जीवन में कुछ नवीनता लेकर जाएं, आपके अंदर रही हुई रचनात्मकता को आप एक नया क्षेत्र दे पाएं और आपके जीवन में जो भी कार्य साधना है उसमें एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग और उत्साह के साथ हम आगे बढ़ सके। ऐसे अनेक विध लक्ष्यों को सामने रख कर के ये 3 दिन का कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। आई होप आप सभी इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ लेंगे और इससे पूरी तरह लाभान्वित होकर के यहाँ से वापस अपने स्थानों पर जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति।
हम सभी युवा भी, दीदी ने कहा कि इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ है प्रोग्राम, तो हम सभी भी प्रॉमिस करते हैं दीदियों से कि एक भी सेशन मिस नहीं करेंगे। करेंगे प्रॉमिस? जो जो कहते हैं कि हम एक भी सेशन मिस नहीं करेंगे, प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा भाई कह रहे, तो सभी याद भी रखिएगा। और सच में इतना मेहनत से ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है और खास आप लोगों के लिए किया है, तो तो जितना उसको अटेंड करेंगे, पूरा अटेंड करेंगे तो ही पूरा लाभ मिलेगा। तो आप सभी युवाओं की तरफ से कुछ चार लाइनें कि चंद लम्हों में हम इतिहास बना देंगे, ये हमारे तीन दिन का जो रिट्रीट है उसी में चंद लम्हों में हम इतिहास बना देंगे, युवाओं की सोच से उजाले सजा देंगे, आध्यात्मिक जड़ों से जो जुड़े रहेंगे वो हर तूफान में खुद को बचा लेंगे। तो ये भगवान के साथ भी प्रॉमिस है और दीदियों के सामने भी प्रॉमिस है। तो इसी लहर को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में विशेष श्रावणी डांस एकेडमी अहमदाबाद से कुछ कलाकार आए हैं और स्वागत नृत्य हम सबके बीच प्रेजेंट करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी श्रेया तीर्थ न्यासा सिद्धि वासुकी, सब श्रावणी डांस एकेडमी ग्रुप अहमदाबाद, स्वागत नृत्य।
नमामि नमामि ईश आराध्य पूजितम्, नमामि नमामि शिव चरणों में वंदनम्, रुद्रगण नाथ शंकरम्, पार्वती नाथ तो शिवम्, संगीत साहित्य आनंद अद्भुत है, तन धीर न धीर न तन रे, रागम तालम नाट्य नटराजन सुंदरम, नादम वेद काव्यम नटराजन सुंदरम, रागम तालम नाट्य नटराजन सुंदरम, नादम वेद काव्यम नटराजन सुंदरम।
श्रावणी डांस एकेडमी ग्रुप ए मन छे एहसासों का जहां हर दिल की कहानी है, तालियों की गूंज में बसी हर एक पेश की रवानी है। तो तालियों की गूंज ने बताई दिया कि ये परफॉर्मेंस दिल से जुड़ा हुआ था। हर महफिल में ऐसा एक पल आता है जब दिल कुछ गहराइयों से महसूस करता है। तो आइए मिलकर उस यात्रा की शुरुआत करें जो बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। अभी हम ऐसी पर्सनालिटी को आमंत्रित करते हैं जो अपने अनुभव से, अपने दिल से युवा सेवाओं से भी जुड़े हैं, युवाओं से भी जुड़े हैं और भगवान के साथ भी जुड़े हैं। तो हम सभी युवाओं को भगवान के साथ जोड़ने का, परमात्मा के साथ जोड़ने का एक साधन भी हमारी दीदी जी हमारे बीच में है। मैं आमंत्रित करता हूं हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी को। चंद्रिका दीदी जी वाइस चेयरपर्सन ऑफ यूथ विंग है। तो एक बार चेयरपर्सन ऑफ यूथ विंग चंद्रिका दीदी को जोरदार तालियों से हम अभिनंदन भी करते हैं। और दीदी जी के परिचय में, वैसे दीदी जी का परिचय तो जितना कहो कम ही होगा, लेकिन दीदी जी की विशेषता है कि जैसे यूथ विंग को लीड करते हैं वैसे ही आर्ट एंड कल्चर विंग के भी चेयरपर्सन है। और साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज में जो भी नई सेवाएं शुरू होती है, नई सेवाएं शुरू की गई है, वो उसके निमित्त भी दीदी जी बने। जैसे टीचर्स ट्रेनिंग, जैसे 3 दिन का शिविर का प्रोग्राम, जैसे मास मेडिटेशन का प्रोग्राम, और दीदी जी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। कुछ अवार्ड्स मेंशन करना चाहूंगा कि गवर्नर ऑफ गुजरात की तरफ से नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन यूथ थ्रू स्पिरिचुअल वे दीदी जी को प्राप्त हुआ था। वैसे ही गवर्नर ऑफ गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी की तरफ के हाथों से धरती रत्न अवार्ड ये भी दीदी जी को मिला था। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिभा के धनी और हर युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन हमारे साथ है दीदी चंद्रिका। तो हम दीदी जी से सुनना चाहेंगे। चंद्रिका दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के विशेष यादगार दिवस, पर्यावरण दिवस के दिन आप हम सभी एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम में हम सब बहुत ही भाग्यवान हैं कि परम आदरणीय सुदेश दीदी जी, जो जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं और इस ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर हैं, आप अपने आशीर्वचन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारी कृति बहन ने, जिन्होंने विशेषता सहित सबका सम्मान किया, ऐसा सम्माननीय मंच, इस मंच को भी हम बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते, धन्यवाद करते जोरदार तालियों के साथ। और क्योंकि हम सभी भी बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसे सुंदर कार्यक्रमों में उपस्थित रहने का हमारा भाग्य बना है, अवसर बना है, तो अपने लिए भी जोरदार तालियां बज सकती हैं। इस यूथ रिट्रीट का विषय बहुत ही आवश्यक और उपयोगी चुना गया है, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय हर एक व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी बनाने का, अपनी इमेज बनाने का अपनी कैरियर बनाने का, अपनी इम्पैक्ट क्रिएट करने का एक ओना बना रहता है कि हम कुछ बने, हम कुछ करें। जीवन में हमें भी कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए, ऐसा हर इंसान के दिल में एक संकल्प भी होता है, इच्छा भी होती है, तमन्ना भी होती है, भावनाएं भी होती हैं, और होनी भी चाहिए, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इस सत्य को हम सभी जानते हैं कि किसी वृक्ष के विकास के लिए उनकी जड़ों में जल देना पड़ता है। पत्तों को पानी पिलाने से वो वृक्ष फलीभूत नहीं होगा। तो मेरे परम स्नेही भाई बहने, बाहरी प्रयासों से हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो क्षमता आनी चाहिए, जो शक्ति आनी चाहिए, वो नहीं आ सकती है। उसके लिए हमें अपनी आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत बनानी होगी, क्योंकि शरीर और आत्मा, इस दो की बनी हुई मनुष्य जीवन, तो मनुष्य शरीर तो टेम्पररी है, नाशवंत है, कुछ वर्षों के बाद खत्म होता है। इस शरीर को सस्टेन करने वाली आत्मा है, और जिस आत्मा के अंदर जिन मूलभूत तत्वों की आवश्यकता है वो हमारे अंदर होना जरूरी है। और वो कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शक्तिशाली रहने के लिए आवश्यक हैं, और वो हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। सबसे पहली बात है, आप सभी इन बातों को, मैं समझती हूँ, अच्छी तरह से एक स्टूडेंट की तरह याद रखेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में डायरी पेन साथ में रखेंगे तो और ज्यादा उत्साह रहेगा, और खास करके जो सुबह में राजयोग का शिविर होता है उस समय तो आप खास रखिएगा, नहीं तो बाद में पश्चाताप होगा कि अरे जी हमने ये मिस किया और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारे से छूट गई। तो पांच बातें हैं जो अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे व्यक्तित्व को बनाने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहला है आत्मविश्वास। मुझे अपने अंदर विश्वास हो, वो कब होगा? जब मैं अपने आप को पहचानती होंगी, जब मुझे अपनी योग्यताओं को, मुझे अपनी क्षमताओं का मालूम होगा, तब उन क्षमताओं का विश्वास करके मैं आगे बढ़ूंगी। यहां आपको पहला लेसन मिलेगा। अभी तो मैं केवल आपको हिंट्स दे सकती हूं, केवल आत्मा क्या है, आत्मा का परिचय क्या है, आत्मा कैसी है। आज हम अपने को एक मेल फीमेल के रूप में महसूस करते हैं, किसी के भाई बहन के रूप में महसूस करते, परंतु वास्तव में इस शरीर के अंदर जो चैतन्य है वो एक आत्मा है, और वो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, हम सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और हम आत्माएं अपने असल में जो हमारी ओरिजिनलिटी है वो है ज्ञान, प्रेम, आनंद, शांति, पवित्रता और शक्ति। अगर मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है तो मुझे अपने अंदर विश्वास रहेगा कि मैं शांति में प्रेम में आनंद पवित्रता की साक्षात प्रतिमा हूं, चैतन्य शक्ति हूं। अगर ये बात याद रहेगी तो आपको अपने आपके प्रति आत्मसम्मान जागृत होगा, आपको अपने प्रति एक स्नेह भाव पैदा होगा और इस आत्मविश्वास को बनाने के लिए आज एक यूनिवर्सल सीक्रेट आपको बता रही हूं, वो आप याद रखेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने व्यक्तित्व को बनाने में सफल होंगे। इस सभा से एक भाई जल्दी से दौड़ करके आ जाए, अपने आप आ जाए, जिसको भी आना है देखे तो सही, ये यूथ कॉन्फ्रेंस कोई भी आ सकते, प्लीज। यस यस वेलकम, वेरी गुड। आपका नाम भैया?
जिगर।
जिगर भाई?
या।
जिगर भाई आपको एक छोटा सा काम देते। यस वेलकम। आपका शुभ नाम?
विश्वास
भाई। ये जिगर भाई और विश्वास भाई, ये दोनों को मैं एक काम दे रही हूं। इतनी बड़ी दुनिया से आपके जैसा दूसरा जिगर भाई और दूसरा विश्वास भाई एक ढूंढ करके आप देंगे? एक ही चाहिए दूसरा, एक जिगर भाई एक विश्वास भाई, इतनी बड़ी दुनिया से हमको ढूंढ के दो, इतना छोटा काम करना है, करेंगे?
शायद तो नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा? पास्ट में कभी हुए? फ्यूचर में कभी हुआ होगा? तो उसका मतलब तो आप यूनिक हो ना
जी,
आपके जैसा कोई दूसरा था नहीं, है भी नहीं, होने वाला भी नहीं, ये पक्का निश्चय है। अच्छा, तो फिर आप अपने आप को कभी किसी से कंपेयर करते हो या कॉन्ट्रास्ट करते हो जीवन में? ये होता है?
कभी कभार
होता है। भाई इन्हों के जवाब राइट है, ताली बजाए, बैठिए। मित्रों, व्यक्ति के जीवन की 90% मानसिकता, सोचने की शक्ति इस समय, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ा है, अगर इस बात की अवेयरनेस नहीं है तो उनकी जिंदगी का टाइम कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट में जाता है। अपने को दूसरों से कंपेयर करेंगे, अपनी बीबी को दूसरों की बीबी के साथ कंपेयर करेंगे, अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ, अपनी गाड़ी को दूसरों की गाड़ी के साथ, या दूसरे को दूसरों के साथ, ये होता है कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट चलता है। जरा हाथ उठा करके यस करिए तो होता है। अगर वास्तविकता ये है, सत्य ये कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे के जैसी हो ही नहीं सकती है, जब दो व्यक्ति एक जैसी है नहीं तो आप कंपेयर कैसे करते हैं, आप कॉन्ट्रास्ट कैसे करते हैं? इस कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट के अंदर होता क्या है कि अगर आप अपने को सुपीरियर पाते हो तो आपको अभिमान आ जाता है, और अभिमान भी इंसान को गिरा देता है, वो तो पॉइजन है। और अगर अपने को थोड़ा डाउन देखते हैं तो डिप्रेशन आ जाता है, हीनता आ जाती है, इन्फीरियोरिटी हो जाती है। तो आज से इस सत्य को रियलाइज करके कभी अपने को दूसरों से कंपेयर व कॉन्ट्रास्ट नहीं करना है, या कभी दूसरों को दूसरों से कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट नहीं करना है, क्योंकि इनके अंदर हम बहुत बहिर्मुख हो जाते हैं और हमारा सारा व्यक्तित्व बिखर जाता है, हम फोकस नहीं रह सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व की जो गरिमा है वो इंट्रोवर्ट रहने में है, वो अपने अस्तित्व को रियलाइज करने में है कि हू एम आई, मैं हूं कौन। इस विश्व पर मानव आत्मा का होना ये कितना बड़ा गौरव है। तो तो सबसे पहली क्वालिटी अपने में लानी है वो है आत्मविश्वास, और इसी बात से आएगी। तो आज हम इस चीज का दान दे दें कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट की वेस्ट गेम के चक्कर में मुझे नहीं फंसना है। जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं वो हाथ उठाएं प्लीज। ओ थैंक यू, थैंक यू। और अपने को बहुत शाबाश दो, दृढ़ता के साथ इतना फाइनल कर लो, आपका जिंदगी का टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकेंगे, क्योंकि आपके पास अपना आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में है। दूसरा, निर्भयता। भय वो बड़े से बड़ा दुश्मन है, वो मनुष्य को मरने के पहले मार देता है। और आजकल तो छोटी छोटी बात का भय है, मैं परीक्षा में पास होंगी या नहीं, मैं स्कोर करूंगी या नहीं करूंगी, मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप सोचिए, इस प्रकार के विचार हमें भयभीत करते हैं, हमें संशयात्मक बनाते हैं, और संशयात्मक बुद्धि विनश्यंती, हमारे व्यक्तित्व को हम ही खत्म कर देते हैं भयभीत होके। निर्भय का अनुभव करेंगे जब आप ये महसूस करेंगे कि मैं अविनाशी आत्मा हूं और मेरा कभी विनाश है ही नहीं, और मैं आत्मा जो सोचूं जो चाहूं वो ही हो सकता है, और मेरी सोच बड़े सकारात्मक है, मेरे सोच रचनात्मक है, मैं हमेशा नया सोचना चाहती हूं। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी, रचनात्मकता, नवीनता होगी तो आप कभी भयभीत नहीं रहेंगे, आप निर्भय रहेंगे, क्योंकि आपके पास न्यूनेस है, आप किसी के फॉलोअर नहीं हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण गुण चाहिए निर्भयता। तीसरा है हिम्मत। हिम्मत के लिए कहते हैं हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। किसी भी काम के लिए हमें केवल एक कदम उठाना होता है, फिर तो परमात्मा और पूरी यूनिवर्स हमारी मदद में आ जाती है, लेकिन हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। अब हिम्मत आती किससे है? जिनका अपना जीवन का कोई साथी या सपोर्टर होता है और उसमें उसको विश्वास होता है कि ये मुझे जरूर साथ देगा, तो उसको हिम्मत रहती है। बच्चे को माँ का सहारा रहता है, बहन भाई को एक दो का सहारा रहता है, टीचर स्टूडेंट का सहारा रहता है जीवन के अंदर, ये रिलेशंस की शक्ति है। आध्यात्मिकता ये कहती है कि हम आत्मा है और हमारा सर्व संबंधी परमात्मा है। जब हम समझते हैं परमात्मा मेरे साथ हैं और मेरे हर कदम में परमात्मा की मदद है, तो कहते हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा, मुझे भगवान की मदद मिलनी ही है। इसी संकल्प के साथ हिम्मत से कदम बढ़ाने से सब कुछ अपने आप हो जाता है। चौथी बात, दृढ़ता। अब जो एक बार सोच लिया वो होना ही है और करना ही है, जो स्वयं के संकल्प है उसके लिए अपने अंदर में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि ये काम मुझे करना ही है और ये काम मैं करके ही रहूंगी, और ये काम आज का सोचा हुआ मैं आज ही करूंगी, अब का सोचा हुआ मैं अब ही करूंगी। जिसके जीवन के अंदर समय का मूल्य है वो दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड मेरी सेकंड है, जो चली गई वो गई, आने वाली का मुझे मालूम नहीं है। ये सेकंड को मैं मोस्ट पावरफुल रीति सक्सेसफुली पास करना चाहती हूं। सेकंड सेकंड की अवेयरनेस से दृढ़ता आती है और एकाग्रता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, लग लगे की तरह लगे रहना है, चाहे उसके लिए आराम का त्याग करना पड़े, सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़े, कुछ सहज भी करना पड़े, कुछ फेस करना पड़े, लेकिन मुझे इसमें सफलता प्राप्त करनी ही है। ये एक ही मात्र लक्ष्य के साथ, एकाग्रता के साथ जब हम प्रयास आरंभ करते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। इन पांच मूल्यों को जीवन में धारण करने के लिए मेडिटेशन, अभ्यास, समय देना है। मेडिटेशन माना क्या? अपने को सारे दिन में थोड़ा टाइम देना, अपने को टाइम देकर के अपने आप से बातें करना। अपने आप से जो बातें की हैं, उस बातों को परमात्मा के द्वारा वेरीफाई कराना, और वो करने के लिए संकल्पबद्ध हो करके दृढ़ता से उसके प्रति लाइन ऑफ एक्शन नक्की करना, इसका नाम मेडिटेशन है। हमें माला नहीं जपनी है, हमें मंत्र उच्चारण नहीं करना है, हमें घर बार छोड़ के जंगल में नहीं जाना है। हमें अपने इसी जीवन में रहते हुए हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा सुबह 3:15 बजे उठ के रात्रि 10 बजे तक बच्चों के साथ रहते थे, बच्चों को सब कुछ सिखाते थे, बच्चों की पालना करते थे, कहां अकेले चले गए ऐसा नहीं, लेकिन एक संपूर्ण योगी बने, सदैव ही अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त किया और आज विश्व के आगे पिता श्री ब्रह्मा के रूप में हम सभी के मार्गदर्शक हैं। हम उसी पिता के बच्चे हैं, उस परम पिता की संतान हैं। अगर इतनी दृढ़ता हमारे मन के अंदर बनी रहेगी तो हमारा लक्ष्य सफल होना निश्चित है। आप सभी इस भाग्य को लेकर के ही आए हैं। आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि आप अध्यात्म की जड़ों को अपने जीवन में इतनी मजबूत करके जाएंगे, जो आप स्वयं अपने को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वाह, ये मेरी व्यक्तित्व की गहराई है, ये मेरी व्यक्तित्व की महानता है। आपको ऐसी अनुभूति अवश्य होगी, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक मिनट के लिए हम अपने संकल्प को दृढ़ करते हैं। रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाए। और बुद्धि को मस्तिष्क के बीच में जहां तिलक किया जाता है एकाग्र करें, और मैं वहां हूं, ये पूरा शरीर होते हुए मैं केवल यहां स्थित हूं, मस्तिष्क के बीच में स्थित हूं। और अब यहां से जो कुछ सूचन मैं करती हूं उसको महसूस करने का, फील करने का प्रयास करेंगे। महसूस कीजिए, मैं एक दिव्य प्रकाश ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं मस्तिष्क के बीच विराजमान, मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा, शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा की वास्तविकता है। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा की संतान, परमात्मा पिता से मुझे शांति की शक्ति प्राप्त हो रही है। परमात्मा से प्राप्त शांति मुझ आत्मा के द्वारा मेरे आसपास पूरे राज्य में, पूरे देश में अखिल ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। मैं शांति दूत हूं, मैं शांति का अवतार हूं, मैं शांति का फरिश्ता हूं। मैंने महसूस भी किया है और मैं अनुभव भी कर रही हूं। आत्मविश्वास, निर्भयता, दृढ़ता, हिम्मत, एकाग्रता, ये सब मुझ आत्मा के विशिष्ट गुण हैं। मुझे बहुत ही खुशी है, मैं एक यूनिक, संसार में सबसे न्यारी व्यक्तित्व हूं। परमात्मा की संतान होने के नाते मैं बहुत भाग्यवान हूं। और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। इन सब प्राप्तियों के लिए मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की शुक्रगुजार हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद आप सब।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। शब्द भी एक बीज है और ये बीज जब हमारे मन में अंकुरित होते हैं तो उसका फल हमें मानसिक शांति या जागरूकता मिलती है। हमारी आदरणीय दीदी जी ने बहुत अच्छी तरह से वो बीज प्रत्यारोपित किए हमारे मन में। स्वयं परमात्मा ने साकार ब्रह्मा बाबा की माध्यम से दीदी जी के मन में ये बीज डाले थे। दीदी ने वो बीज पहली गुजरात में जो गर्ल्स हॉस्टल बनाई उसमें जो कन्या है कन्याओं के मन में डाला और आज हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे मन में भी वही बीज आध्यात्मिकता के हमारे मन में डाले हैं। आज वैसे भी विश्व पर्यावरण दिवस है तो आप सबके मन में भी ये संकल्प आ रहे होंगे। तो यहाँ पीछे एक ग्लोब लगा हुआ है, अगर आपके मन में भी संकल्पों के कुछ बीज आ रहे होंगे तो संकल्प आप चिटकी पे लिख के वो ग्लोब पे लगा सकते हैं। जहां दीप जलते हैं वहां अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। यह दीप केवल प्रकाश नहीं बल्कि राष्ट्र और आत्मा के बीच सेतु है। तो चलिए आज हम उस अंधकार से उजाले की ओर चलते हैं और दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस रिट्रीट का उद्घाटन करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सम्माननीय मंच, आप कृपया दीप प्रज्वलन के लिए दीप के पास पहुंचेंगे और साथ में हमारे जो महानुभाव आए हैं उनसे भी निमंत्रण कर देता हूं दीप प्रज्वलन के लिए। डॉक्टर किरण कुमार जी, किरण कुमारी, डॉक्टर किरण कुमारी, परशुत्रुत भाई और सुयश जाधव जी, आप प्लीज आइए दीप प्रज्वलन के लिए। और हमारे यूथ प्रभाग की ओर से हमारे सीनियर आदरणीय अरुण भाई जी, आदरणीय अनुसुईया दीदी जी, आदरणीय गीता दीदी जी, आदरणीय सुनीता दीदी जी, अशोक भाई जी अहमदाबाद, आदरणीय विनु भाई जी, आदरणीय छाया बेन जी, आदरणीय प्रहलाद भाई जी, आदरणीय वीरेंद्र भाई जी ज्ञान सरोवर और आदरणीय रूपेश भाई जी ज्ञान सरोवर, कृपया आप भी आइए और दीप प्रज्वलन में सहभाग कीजिए। और जो हमारे युवा साथी हॉल में बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अपने अपने मोबाइल की टॉर्च निकालकर हम दीप प्रज्वलन में सब सामूहिक रूप से इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं। सभी अपने अपने टॉर्च लाइट कीजिए। खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा, सभी खड़े हो जाएंगे और अपने मोबाइल के टॉर्च से
कहने वाले कहते हैं पर करके हम तो दिखाएंगे
दिखाएंगे हम दिखाएंगे
मूल्यवान बन मूल्यों की दुनिया हम नई बनाएंगे
बनाएंगे हम बनाएंगे
आने वाली सुबह प्यारी दिन भी प्यारा
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कृपया अपना स्थान फिर से ग्रहण कर लीजिए। जैसे दीपक की लौ अंधकार को हरती है वैसे ही ज्ञान और योग से जीवन प्रकाशित होता है। आज का यह सम्मेलन भी हमारे भीतर एक नई रोशनी जगा रहा है और उसी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के सम्मेलन में आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर निरंजन पटेल जी। डॉक्टर निरंजन पटेल जी जो वाइस चांसलर है विद्यानगर से, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विद्यानगर से। कुछ संक्षिप्त परिचय भाई साहब का देना चाहूंगा। वैसे तो बहुत प्रतिभा के धनी है, बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हमारे बीच में है। अभी वर्तमान में वाइस चांसलर है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर, प्रोफेसर है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के, अध्यक्ष है अखिल भारतीय साहित्य परिषद गुजरात के, और साथ साथ भाई साहब ने बहुत सारे रिसर्च के पेपर्स किए हैं, रिसर्च पेपर्स में हेल्प भी की है, बहुत किताबें भी लिखी है। विशेष रूप से मेंशन करना चाहूंगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुज्म के ऊपर बहुत रिसर्च भी किया है और बहुत मेहनत भी की है और गाइड भी किया है, और मोर देन 100 लेक्चर्स HRDC में डिलीवर किए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बाईजैक प्रोमोटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट में वहां भी लेक्चर्स दिए हैं। ऐसे बहुत ही प्रतिभाशाली और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हमारे बीच में है। सभी एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का अभिनंदन भी करेंगे और वेलकम भी करेंगे। भाई साहब
हेलो हेलो कृष्णम वंदे जगत गुरु। जब जब मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेरा जाना होता है तो अलग प्रकार का अनुभव महसूस होता है। आज भी हम इस स्थान पर बैठकर कुछ अलग अनुभव महसूस कर रहे हैं। अभी अभी हमारे बीच आदरणीय बीके चंद्रिका दीदी ने बहुत सारी बातें हमारे सामने प्रस्तुत की। मूल प्रश्न यह है कि हमारी जो आध्यात्मिकता है वो आध्यात्मिकता को हम जीवन के साथ कैसे जोड़ें, और जो युवा है युवाओं को हमारी परंपरा से कैसे दें, क्योंकि जो पढ़ लिख गया वो अनपढ़ हो गया, अपनी जड़ों से कट गया, अपनी परंपरा से कट गया, अपनी विरासत कट गया, अपनी धरोहर से कट गया, अपनी भारतीयता से कट गया, अपनी परंपरा से कट गया, और ऐसे शिविरों के माध्यम से हम अपने रिकनेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं जो अपने भारत। तो आज हमारे सामने आप जो बैठे हैं वो भारत का भविष्य है, और विकसित भारत जब 2047 में होगा तब तो हम नहीं होंगे, लेकिन आप विकसित भारत कैसा होना चाहिए, विकसित भारत की हमारी जो संकल्पना है होनी चाहिए उसका आप प्रत्यक्ष करेंगे। न केवल विकसित भारत भौतिक तौर से लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी बलवान होना चाहिए। हम सब जानते हैं जब हमारा भारत सोने की चिड़िया थी तब हम आध्यात्मिक रूप से ही सफल थे, तो आज जो कमी महसूस कर रहे हैं हम वो आध्यात्मिकता को हमें आज जरूरत है। और ऐसे शिविरों के माध्यम से हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो आप 3 दिन यहाँ रुकेंगे, 3 दिन जो चर्चा होगी वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है, और शुरुआत करके आपको घर आके भी ऐसे ही एक डिसिप्लिन लाइफ, ये सब करने का उद्देश्य यही है कि हमारा जो जीवन है वो जीवन में नियमितता आए, एक डिसिप्लिन बनी रहे। क्योंकि आज हमारा जीवन जो है हम सब देखते हैं एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, जीवन हमारा कोई एक डिसिप्लिन में नहीं होता। अगर मैं आपको प्रश्न करूं कि आप कितने बजे सुबह में जगते हैं, रात को कितने बजे सो जाते हैं, रात को सोते वक्त आप कितने बार मोबाइल का यूज करते हैं, पूरे दिन में कितनी बार मोबाइल देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन के सामने आप कितने घंटे तक बैठते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपकी दैनिक क्रिया है, वो दैनिक क्रिया से आपको दूर हटना है, तभी ये आध्यात्मिकता अपने जीवन में प्रवेश ऐसी है जो हम कथा से शुरू करूंगा, वार्ता से शुरू करूंगा। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका विजय की, और लंका विजय में काफी लोगों का योगदान रहा, उसमें वानरों का भी योगदान था, सब छोटे छोटे पशु पक्षियों का भी योगदान रहा। उस लंका विजय के बाद ये वानरों में कैसी चर्चा चली कि माता सीता का दर्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर अवगुंठन प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, तो स्त्रियों को हम देख नहीं पाते थे। तो वानरों ने हनुमान जी को जाके निवेदन किया कि माता सीता के भद्र मुख का हमें दर्शन करना है। तो यह वहां भी अपार्टमेंट था, वहां हनुमान जी ने जामवन को जाके बताया, जामवन जी ने भगवान श्री राम को जाके बताया, और भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, यज्ञ विवाह है व्यसने च निर्दोष कन्या ही दर्शनम, आज तो आनंद का दिवस है, कन्याओं का दर्शन कोई दोष रूप होता नहीं है। तो माता सीता का अवगुंठन उन्होंने दूर कर दिया, एक लाइन पर सब बंदर जब वानर खड़े हैं वहां से राम सीता लक्ष्मण जी वहां से निकलते हैं, और माता सीता के भद्र मुख का दर्शन करके इतने वानर भाव विभोर हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक चर्चा चलती है, ये सब तो ठीक है लेकिन पूछ तो है ही नहीं, ये सब तो ठीक है लेकिन पूछ तो है ही नहीं, ये क्या है? परसेप्शन है। अगर आप अपना दृष्टिकोण को नहीं बदलते, अगर आप शिविर में आए हैं, अगर शिविर में जब आए थे तब आपने आत्मनिरीक्षण किया होगा कि मैं कहां हूं, और 3 दिन के बाद आप जा रहे हैं तो आपको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि मैं आया और मैं जा रहा हूं तो मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं। तो ये परसेप्शन जो है, दृष्टिकोण है, अगर वो आप बदल नहीं पाते हैं तो आपका आना यहां व्यर्थ हो जाता है। तो आपको अपने परसेप्शन को बदलना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है, न केवल अपने अभ्यासक्रम को, अपने करिकुलम को, लेकिन अपने प्रति देखने का, दूसरों के प्रति देखने का, समाज को देखने का, राष्ट्र को देखने का, विश्व को देखने का। जब तक हम परसेप्शन नहीं बदलेंगे तब हम कुछ कर नहीं सकते, और उसमें हम आध्यात्मिकता को किस रूप में जोड़ सकते हैं वही हमारा विषय है। तो जब हम बाहरी दुनिया में अस्थिरता, अशांति, युद्ध, मानसिक तनाव निरंतर बढ़ रहे हैं हम देखते हैं अभी, तब भारत की सनातन चेतना हमें अपने भीतर के स्थायी सत्य की ओर लौटने का आह्वान करती है। हमारी संस्कृति केवल परंपरा इतिहास नहीं है, एक जीवंत अनुभव है। भारत भूमि जिसे ऋषियों ने कर्म भूमि धर्म भूमि कहा, वह आज भी हमें भीतर की ओर देखने की प्रेरणा देती है। वेद उपनिषद केवल ग्रंथ नहीं है बल्कि आत्मबोध की ऊंचाइयों की अनुभूति है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, श्वेताश्वतर उपनिषद हमें कहती कि हे अमृत के पुत्र, हम तो सब अमृत के पुत्र है, वयम सर्वे अमृतस्य पुत्राः, हम तो अमृत के पुत्र इसलिए है कि हमने जो किया है वो कोई दुनिया में नहीं कर सकता। लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं, जो आत्मविस्मृति है ना, वो आत्मविस्मृति को हमें दूर करना है, और आध्यात्मिकता से ही हमारी आत्मविस्मृति दूर हो सकती है। वयम सर्वे सिंहस्य पुत्राः, हम तो सिंह के पुत्र है। हमारी परंपरा को देखिए, दुष्यंत का जो बेटा है वो सिंह के मुख में जो दांत है वो दांत गिन रहा था कि क्या आपके पीछे, ऐसी हमारी बड़ी परंपरा है। तो अमृतस्य पुत्राः, तुम सुनो, तुम दिव्य हो, शरीर नहीं अपि चेतन आत्मा हो, यह उद्घोषणा भारत की आत्मा की पहचान है। इस ब्रह्मांड में एक ही चेतना है जो विविध स्वरूप में प्रकट करती है, और यही है आध्यात्मिक दृष्टि। आज जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बाह्य जगत को तीव्रता से विकसित कर दिया है। हम बहुत बाह्य जगत से तीव्रता से विकसित हो रहे। हमें यह आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या हम भीतर से भी उतना ही विकसित हुए हैं, क्या हमारी जड़ें उस आत्मा में जो नित्य शाश्वत अचल है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम चंदाओं से यस्त प्रणानी यस्तम वेद स वेद भीत। उन्होंने बहुत सारा रूपक देकर ये बातें अपने सामने बताई है। ये संसार जो वटवृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर है, जिसकी जड़े का मतलब है परमात्मा ऊपर है और शाखाएं नीचे है, भौतिक संसार में फैल रही है। यह प्रतीक हमें सिखाता है कि यदि हम अपनी आध्यात्मिकता से अपनी जड़ों से कट जाएंगे तो जीवन की जो शाखाएं है वो सूखने लगती है। स्थायित्व, संतुलन और शांति के लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। और आज हम कहते हैं कि जो अपनी जड़ों से जो पढ़ लिख गया वो अपनी जड़ों से कट गया, क्योंकि हम अपनी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, वो विरासत को हम आध्यात्मिकता से नहीं दृष्टि, नहीं वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखते। और हम कहते हैं कि ये तो सब गप बातें हैं, अर्धसभ्य असभ्य लोगों की बातें हैं। हमारी जो पूरी परंपरा है, हमारी जो जीवनचर्या है, हमारी जो दिनचर्या है, भारतीय जो जीवनचर्या है, उसको वो लोग मानते नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही थी इस बार कि विज्ञान केवल बाह्य सुख दे सकता है, परंतु अंतःकरण की शांति केवल आध्यात्मिकता से ही आती है। अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो हमें अगर सुख प्राप्त करना है तो सुख तो मिल जाएगा, लेकिन शांति अगर प्राप्त करनी है तो शांति आध्यात्मिकता में ही है। आध्यात्मिकता कोई कल्पना नहीं है, वरन वह मनुष्य के अस्तित्व का केंद्र है। तैतरीय उपनिषद में 5 कोषों की बात कही गई है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये हमारा जो शरीर है वो शरीर पावर हाउस है, लेकिन हम पावर हाउस को जानते नहीं है, उनकी शक्ति के बारे में हम जानते नहीं है, क्योंकि हमारी शक्ति जो है बाह्य प्रसंगों में हम खर्च कर देते हैं। तो ये जो पंचकोश है वो पंचकोश से हमारा जो शरीर बना है, तो हमारी जो यात्रा है वो अन्नमय से होकर आनंदमय तक जाती है। और केवल मनुष्य शरीर नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। सयो ह वा एष आत्मा सब ब्रह्म, ऐसा कहा गया है। आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां देना नहीं है, बल्कि आत्मबोध की प्रक्रिया होना चाहिए। इस संदर्भ में श्री अरविंद का कथन अत्यंत प्रासंगिक है। भारत की आत्मा उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक हम अपनी आत्मा को पुनः नहीं प्राप्त करेंगे तब तक अपनी नियति को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आत्मा क्या है, आत्मचित आत्मतत्व क्या है, वो हमारे शरीर में किस रूप में रहता है, उसको हम किस रूप में प्रकट करना है, वो हमें अपने अपने ढंग से, जैसे अभी चंद्रिका दीदी ने बताया आत्मा के स्वरूप के बारे में, तो हमें अपने ग्रंथों के पास जाना पड़ेगा, अपनी धार्मिक जो परंपरा है, अपनी जो दार्शनिक परंपरा है, वेद उपनिषद, उसके पास जाना पड़ेगा। और आत्मतत्व के बारे में हमें निश्चित करना पड़ेगा कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, उसका भेद क्या है। इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक मूल्यों को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। यह केवल उपदेश का विषय नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। तो हम ये कैसे करें, प्रश्न होता है ना हमारे युवाओं को, अभी प्रश्न ही नहीं हो रहे, उनको प्रश्न भी नहीं होते। हमारे युवाओं को प्रश्न होने चाहिए, जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तब तक किसी चीज का समाधान नहीं होगा। क्योंकि हम तो सब बुद्धस्थ हो गए, सिद्धस्थ हो गए, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसी हमारी मानसिकता बन जाती है। तो आप प्रश्न करिए, खुद से प्रश्न करिए, दूसरों को तो प्रश्न करिए ही करिए, अपने आप से भी प्रश्न करिए और ये इसके बारे में जानने का प्रयत्न करिए। तो ये आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कैसे आ सकती है, तो हम ये कैसे करें, तो सबसे पहले हमें करना है नित्य ध्यान करना है और आत्मनिरीक्षण करना है। हमें हर रोज नित्य ध्यान करना है। ऐसा नहीं कि आज कर दिया कल छोड़ दिया। और सबसे बड़ी चीज आपके युवाओं में यह है, मैंने देखा है हमारे बच्चे भी बहुत है, हमारे सरदार पटेल विश्वविद्यालय में, तो वो नियमित रूप से कुछ नहीं करते, जोश में आ जाते हैं, होश में नहीं होते, और जोश में जाके कर देते हैं, लेकिन दूसरे दिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप सातत्यपूर्ण किसी चीज को नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और आज भी आप जो बैठे हैं यहां, वो जो बैठे हैं वो भी एक तप है, एक साधना है। अगर आपने आसन सिद्धि भी कर ली ना आज तीन दिन तीन घंटे तक बैठने की, तो भी बड़ी उपलब्धि है अपने जीवन में। तो आपको तीन दिन की आसन उपलब्धि भी हो जाती है। अब हम अष्टांग योग में कहते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, तो आसन सिद्धि भी इससे सिद्ध हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको नित्य ध्यान करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, और गीता जैसे ग्रंथ जो है, उपनिषद जैसे ग्रंथ है, जो जीवन दर्शन के ग्रंथ है, भारतीय सनातन परंपरा के जो ग्रंथ है, उसको हमें अध्ययन करना है। ये केवल पाठ्य ग्रंथ नहीं है, ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये प्रकाश स्तंभ है। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, जीवन की रणनीति है। और हम बड़े दुर्भाग्यशाली है, जानामी धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामी अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। आज भी हमारी स्थिति दुर्योधन के जैसी है, क्योंकि सामने परात्पर ब्रह्म, साक्षात परब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण खड़े हैं, लेकिन वो उनको देख नहीं पाता है। हमारी भी यही स्थिति है कि हम अर्जुन की दृष्टि को प्राप्त करें। अर्जुन ने जैसे भगवान को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, ऐसे हम भी अपने आध्यात्मिक शक्ति से अपने परमात्मा को, अपने आप को जानने का अवसर प्राप्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको जो अचीव करना है, जो आपको सक्सेस होना है, आपको सफल होना है, आपको साफल्य प्राप्त करना है अपने जीवन में, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सब करने की आवश्यकता है। उसके बाद है समग्र शिक्षा को अपनाइए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की आज हम बात करते हैं। समग्र शिक्षा, शरीर मन हृदय और आत्मा सभी का संतुलित विकास ही सच्ची शिक्षा है। अगर आप शरीर से विकसित हो गए लेकिन मन से कुंठित है, कुछ नहीं होने वाला। अगर मन से कुंठित विकसित हो गए, शरीर से कुंठित है, कुछ नहीं होने वाला। तो शरीरम खलु आद्य धर्म साधनम, मन को भी विकसित करना है, मन की स्थिति को भी जानना है कि मन है क्या, ये चीज क्या है जो आत्मा को, मन अपने इंद्रियों को आत्मा के साथ किस रूप में जोड़ती है, और इंद्रियों किस रूप में अपने आघात प्रत्याघात को सहन करती है और उसके द्वारा ले जाती है। तो ये सब हमें करने की जरूरत है। सदाचार, सत्संग और साधना का पालन करें। साधना बहुत करनी पड़ती है। हम बहुत सारी गौरवशाली इतिहास को बढ़ाते रहते हैं कि हमारे यह सारी गौरवशाली इतिहास है, इतनी साधना हमने की है, लेकिन हम खुद नहीं करते, हमें करना पड़ेगा तभी होगा। तो सच्चे साथी, निष्काम सेवा आध्यात्मिक जीवन की नींव है। और ब्रह्मा कुमारी में से हमें जो सीखना है वो ये है, सेवा को साधना बनाइए। यहां सेवा ही साधना है। हम देखेंगे आप इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सारे पदों पर रहकर भी आए हुए यहां लोग हैं, लेकिन इतनी सेवाएं वो करते हैं। तो सेवा को हमें साधना बनाने की आवश्यकता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है, अपनी परमात्मा को के साथ जोड़ता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृदह कस्य स्विद धनम ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। ये जो ईशावास्य का जो मंत्र है, वो मंत्र को हमें जानना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने भारतीय ज्ञान परंपरा को सभी विश्वविद्यालयों में कंपल्सरी कर दिया है, और सभी डिसिप्लिन में हम भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाते हैं। अगर आप भी कोई विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे तो आपको भी करिकुलम में होगा कि आपको एक भारतीय ज्ञान परंपरा को आपको पढ़ना है। जब तक भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं जानेंगे, हम अपनी प्रयासत को नहीं जानेंगे, तब तक हम विकसित नहीं हो पाएंगे। तो हमें अपने आप को जानना है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि अंग्रेजों ने तो बहुत सारी मार मारी है, यवनों ने भी बहुत सारी मार मारी है, लेकिन हमारे भारत के जो अंग्रेज है, वो भारत के अंग्रेजों ने बहुत सारी हमें मार मारी है, और इससे हमें बचने की आवश्यकता है। और हमें ये हमें विश्वविद्यालयों में हम कर रहे हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को हम अपने करिकुलम में ला रहे हैं, जिससे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, साइंस का विद्यार्थी, इनको पता ही नहीं दर्शन क्या है, न्याय दर्शन क्या है, वेदांत क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और उनके 25 तत्व क्या है, वो उनको सब में पता ही नहीं उनको कि किस रूप में वो जानेंगे, उसका सोशल इम्पैक्ट भी है। तो दर्शन के साथ ये सब सारे चीजें जुड़ी है। यह त्याग का नहीं, समर्पण का संदेश है। समर्पण वह शक्ति है जो अहंकार को मिटाकर आत्मा को प्रकट करती है। और हमें अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अहंकार को मिटाना पड़ेगा। आई को स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, आई को स्मॉल लेटर करना पड़ेगा, वो बिग लेटर में नहीं कर सकते। अहंकार को हमें नीचे ले जाना पड़ेगा। जब तक अहंकार उनकी नीचे नहीं ले जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ना है। वैश्विक दिव्य चेतना को समर्पित होकर और उसे मन प्राण शरीर में कार्यान्वित करना है। उच्चतम चेतना के प्रकाश में हमें मानव से दिव्य मानव में रूपांतरित होना है। आध्यात्मिकता को हमें जीना है। आज की शिक्षा प्रणाली में यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। हम छात्रों को केवल ज्ञान नहीं देना चाहते, ये तो पूरा ज्ञान सरोवर है, और ज्ञान सरोवर में हमें गोता लगाना है, और गोता लगाकर हमें कुछ बिंदु को प्राप्त करना है, अमृत को प्राप्त करना है, लेकिन वो अमृत तत्व भी प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ये बंद कर रहा है ना, हाँ तो कर देंगे ठीक है तो मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। तो आइए हम संकल्प करें कि हम अपने भीतर के उस अमृत स्रोत को पहचानेंगे और जिससे हमारी संस्कृति, हमारी चेतना, हमारा भविष्य जुड़ा है। आध्यात्मिकता भारत की आत्मा है और हमें नूतन भारत का निर्माण करना है, हमें नूतन विश्व में भारत का निर्माण करना है, नूतन भारत का निर्माण करना है, तभी हो सकता है। और मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा, आप इस तीन दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर तीन दिन के कार्यक्रम में हमारे युवाओं के हाथ में अगर मोबाइल होगा तो कार्य आपका संपन्न नहीं होने वाला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मोबाइल बंद करके आइए और फिर कहिए, तभी हो सकेगा, बाकी ये कुछ होने वाला नहीं है। आप यहां बोलेंगे, आप सुनेंगे, तीन दिन के बाद वो सब हवा हो जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
और हम सभी एग्री करेंगे मोबाइल साइलेंस करने के लिए, एग्री है सभी? साइलेंस करेंगे या स्विच ऑफ करेंगे? सेशन के समय पूरा स्विच ऑफ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में एक अनाउंसमेंट है कि अभी इस सेशन के बाद ही आप सभी को परमात्मा के घर से गिफ्ट दी जाएगी, इसलिए कृपया कोई भी उठे नहीं, और जो भी उठ के गए हैं वो भी फिर से हॉल में वापस आ जाएंगे, क्योंकि गिफ्ट केवल आज ही मिलेगी इस प्रोग्राम के तुरंत बाद। अभी हम आमंत्रित करते हैं हमारी अगली वक्ता मिस ईशा अग्रवाल, फॉर्मर मिस इंडिया। उनके परिचय में कुछ शब्द, एक नाइस यूथ आइकॉन है, आर्टिस्ट है, स्पिरिचुअल एम्बेसडर है, एक स्पेशलिटी इनके इसमें है। बहुत सारे टाइटल्स इन्होंने जीते हैं, उसमें से कुछ टाइटल्स है मिस इंडिया एग्जीक्यूटिव 2015, ग्लोबल इंटरनेशनल प्रिंसेस 2018, मिस ब्यूटी टॉप ऑफ द वर्ल्ड 2019। ये स्पेशल क्राउन इनको मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्राउन इन्होंने अपने जो फील्ड है, जैसे कहा कि ये ग्लैमरस फील्ड है लेकिन इसमें स्पिरिचुअलिटी और इसका बड़ा अच्छा बैलेंस किया है, इसलिए सबसे बड़ा टाइटल तो इनको है कि परमात्मा के घर के बगिया के एक सुंदर से फूल है, तो वो सबसे बड़ा टाइटल इनको है। इनके लिए बस चार लाइनें इनके जीवन के आधार से, कि जोश है, जज्बा है, इरादा भी जवान है। जोश है, जज्बा है, इरादा भी जवान है, हर युवा में एक उजला आसमान है। आओ जोड़े अपने संस्कारों की डोर, यही तो हमारी रूह की पहचान है। तो ऐसे हमारी ईशा जी को आमंत्रित करते हैं, हम सबको प्रेरणा देवे। और जैसे कि कहा कि अभी इसके बाद आपको सबको गिफ्ट मिलेगा, इसलिए सभी वक्ता थोड़ा शॉर्ट में अपनी प्रेरणाएं देंगे। थैंक यू।
ओम शांति। आज मैं आप सभी के सामने खड़ी हूं, एक एक्टर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या मॉडल या डॉक्टर के रूप में नहीं, बट सिंपली और प्राउडली गर्व के साथ बाबा का बच्चा हूं मैं, मीठा बच्चा, वैसे खड़ी हूं। और ये जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं बाबा का बच्चा हूं, इसी से मुझे बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एक स्टेबिलिटी मिलती है। और ये आइडेंटिटी शाश्वत है, मतलब ये आइडेंटिटी कभी मुझसे नहीं छीनी जाएगी। लौकिक जो है आइडेंटिटीज तो मिलते रहते हैं, बट ये जो आइडेंटिटी है इसी से मेरा दृष्टिकोण भी दृढ़ हुआ है। कौन सा दृष्टिकोण? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये मुझे आत्मविश्वास आता है राजयोगा से। राजयोगा ने ही मुझे सिखाया आज में जीना, इस पल में जीना, और ऐसे नहीं जीना, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, एक क्लैरिटी के साथ जीना सिखाया है। और बात कहूँ तो आज मैं मेरी स्पीच शॉर्ट करती हूँ, आई नो आप सभी को भूख लगी होगी, मुझे भी लगी है। आज की युवा पीढ़ी जो है, मुझे लगता है कंफ्यूज है, रेस्टलेस है। क्यों? क्योंकि वो महत्वाकांक्षी है, ऐसा नहीं है, दे डोंट लैक एम्बिशन, क्योंकि वो खुद को भूल गए हैं वो कौन है। तो वो भूलने से ही जो बॉडी कॉन्शियसनेस है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये इमेज हूं, मैं ये टाइटल हूं, मेरा ये रोल है, मेरा अपीयरेंस ऐसा है, उसी से हम खुद को अटैच कर चुके हैं, राइट? इसलिए हमको बहुत टेंशन में रहता है युवा पीढ़ी। और ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ये कैसे जाता है सोल कॉन्शियसनेस से, मेडिटेशन से? हमें फिर से खुद को याद करना पड़ेगा कि हमें शरीर नहीं है, हमें सोल कॉन्शियसनेस है। और जैसे हम भूल जाते हैं हम सोल नहीं है तो हमारे एडिक्शन आते हैं। आज मैं कितना देखती हूँ कितने एडिक्टेड है आज की युवा पीढ़ी, ड्रग्स हो या अल्कोहल हो या टबैको हो, कितने नए नए एडिक्शंस आ गए हैं। तो एडिक्शन क्यों आते हैं? क्योंकि हम खुद को आइडेंटिटी उसी चीज से कर रहे हैं, ये इमेज, एक इमेज बना चुके हैं हम, राइट? और हमें वापिस खुद को याद दिलाना है कि मैं एक शांत स्वरूप, पवित्र, ब्यूटीफुल सा एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। उसी से हमें वो पूरी शक्तियां मिलेगी। अगर ये हम भूल जाएंगे तो वापिस एडिक्शन में चले जाएंगे। तो आज जो युवा विंग मतलब यूथ विंग इनॉग्रेशन है और साथ ही में वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, चलो आज हम एक शपथ लेते हैं, धरती माँ को ही नहीं अंदर की जो हमारी प्रकृति है उसका भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि हम जब अंदर से ध्यान रखेंगे वो बाहर दिखेगा, तो हमारा जो फ्यूचर है वो भी किस पे बिल्ड होगा? एक क्लैरिटी के साथ, श्रद्धा के साथ, आत्मिक श्रद्धा के साथ। और मुझे लगता है कि जब ये सारी पावर्स हमें मिलती है तो युवा वही है जो अगर खुद का संबंध भक्त परमात्मा से जोड़ दे तो वो स्वयं परिवर्तन नहीं बल्कि पूरा विश्व परिवर्तन कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं, जैसे गीता दीदी ने मुझे बुलाया था लास्ट मोमेंट पे, तो मैंने भी अपने कुछ काम छोड़ किया कि नहीं, मुझे बाबा ने बुलाया है, मेरे को ये सेवा करनी है और मैं करूंगी। मेरे वजह से 10 लोग भी जुड़ गए, बाबा का परिचय मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम इतने कम उम्र में ये क्या कर रही हो, इतना मतलब, मुझे लगता है ये जो मेरा बाबा से मैं जो मिली हूँ, जुड़ी हूँ, इसी से मैं ये फील्ड में रह के भी न्यारी और प्यारी रह सकती हूँ, डिटैच रह सकती हूँ। जैसे बाबा बोलते हैं ना, कमल जैसे रहो, कीचड़ में रहते हुए भी उसको बिल्कुल वो अनटच्ड रहता है दुनिया से, वैसे मैं रहती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी हमारे युवा पीढ़ी को कि अध्यात्म से जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली वे टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं हमारे अगले वक्ता, जो हमारे बीच में बहुत अच्छी प्योर पर्सनालिटी है, भ्राता आलोक अग्रवाल जी, जो विशेष करके, सर वहां माइक चाहिए, तो माइक वहां चाहिए, नहीं माइक वहां चाहिए आपको जी। भ्राता आलोक अग्रवाल जी सोशल वर्कर है, 50 से ज्यादा देशों में अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जिसके माध्यम से खास करके मेडिकल टूरिज्म फाउंडेशन के नाम से अपना फाउंडेशन चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार की जो ट्रीटमेंट्स होती है, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स होती है, क्वालिटी ट्रीटमेंट्स होती है, सबको प्रोवाइड करने का या कराने का एक पुण्य कार्य आलोक अग्रवाल जी हमारे सबके लिए कर रहे, हमारे समाज के लिए कर रहे। हमारे बीच आलोक अग्रवाल जी उपस्थित है, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, इसलिए सभी करतल धोनेशन का वेलकम करेंगे मिस्टर आलोक अग्रवाल।
आदरणीय चंद्रिका दीदी ने जैसा सबको बताया, 5 बिंदु बताए, मैं आशा करता हूँ सभी भाई लोग उनको स्मरण करेंगे एवं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी परिवार, आयोजक एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, इस आध्यात्मिक वातावरण में मैं इस पवित्र धरा पर जहाँ विचारों और शांति एवं दृष्टिकोण का उद्देश्य होता है, आप सभी से मिलजुल कर अत्यंत आनंद के और गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं आलोक अग्रवाल एवं मेरा पूरा परिवार ओम शांति एवं बाबा के ज्ञान से पिछले 30 वर्ष से जुड़े हुए हैं। मेरा सफर, मेरा जीवन बहुत ही सामान्य परिस्थितियों से शुरू हुआ, संघर्ष, असमंजस्य, असफलताएं सबका अनुभव किया, लेकिन एक बात मैंने हमेशा सीखी, हर कठिनाई, हर चुनौती हमें एक दिन नई दिशा देती है, अगर हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। मैं मेडिकल टूरिज्म फाउंडेशन नामक संस्था का निदेशक हूं। हमारी संस्था आज 50 से अधिक देशों के लिए काम कर रही है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा के साथ साथ आशा देखभाल सम्मान देने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज मैं एक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण जीवन से निकले अनुभवों को बांटने वाला व्यक्ति बनकर आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने देखा कि दुनिया भर के लोग शरीर का इलाज करवाने भारत आते हैं, लेकिन जब वह यहां संवेदनशील सेवा और आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव करते हैं तो कहते हैं कि हम सिर्फ इलाज करवाने नहीं आए, हमें तो आत्मा की शांति यहां मिले। और तब मुझे एहसास हुआ कि भारत का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मिक चेतना है। युवाओं को मेरा संदेश है, प्रिय युवाओं, आप वह शक्ति हैं जो आने वाले समय दिशा आपको देंगे, लेकिन यह शक्ति तभी सार्थक होगी जब उससे संस्कार, आत्मनियंत्रण और आपका उद्देश्य होगा। मेडिकल टूरिज्म ने मुझे सिखाया, इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, एक अच्छा शब्द, एक शांत मन, एक दयालु हृदय, यही असली चिकित्सा है। आप अपने जीवन में यह अपनाइए, स्वयं को जानिए कि मैं कौन हूं। आप विचारों को शुद्ध कीजिए क्योंकि विचार में ही भविष्य का निर्माण करते हैं। और सबसे जरूरी है, सेवा का भाव रखिए बिना किसी अपेक्षा के। आज की दुनिया में बुद्धिमत्ता से ज्यादा करुणा की जरूरत है, तेजी से ज्यादा संयम की जरूरत है और दिखाने से ज्यादा मूल्यों की जरूरत है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के हृदय और दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने दुनिया भर के युवाओं के अंतर्मन में इस शक्ति से जुड़ने का ऐसा अद्भुत प्रयास किया है। और आप सभी युवाओं को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सफल वही है जो स्वयं को जानकर दूसरों को ऊंचा उठाता है, धनवान वही है जिसके पास समय है, सेवा है, संतुलन है, और महान वही है जिसके विचारों में शांति और क्रमा में श्रद्धा हो। आप सभी को इस सुंदर यात्रा के लिए शुभकामनाएं एवं आपकी सभी मनोकामनाएं परम पिता परमेश्वर आपकी पूरी करे। इसके पक्ष में दो लाइनें में बोल रहा हूं। इसके साथ साथ मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में देश के प्रति जरूर भावनाएं जगाएं। मैंने ये कविताएं बहुत पुरानी पढ़ी थी, दो मिनट ले रहा हूं मैं आपके, कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये मेरी आठवीं क्लास में मैंने कविता पढ़ी थी, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है कि मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, दुर्योधन ये भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को वह बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझमें ले है, ये देख विघन मुझमें भी ले, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। और अभी वो पल है जो पूरे ज्ञान का अनुभव हमारे बुद्धि में समाहित करने का। हमारे बीच में आदरणीय सुदेश दीदी जी है, तो आइए हम सुनते सुदेश दीदी से आशीर्वचन। दीदी जी वैसे पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया है, लेकिन जिस ईश्वरीय मार्ग में, ईश्वरीय साधना में अपने जीवन को समर्पित करते हुए 100 से ज्यादा कंट्रीज में अभी तक ट्रैवल किया है, और खास करके यूरोपियन कंट्रीज की डायरेक्टर भी है, ज्ञान सरोवर कैंपस की डायरेक्टर है, लेकिन साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है। तो दीदी के पास अनुभव का अथाह भंडार है, और विशेष बात दीदी जी की ये कहेंगे कि कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, दीदी अपने अनुभव से, अपने शांति के प्रकंपनों से सामने वाले के भी विचार भी शांत कर देते हैं, उनको ज्ञान का उद्भव कर देते हैं। तो ऐसे दीदी जी से सुनेंगे आशीर्वचन। सुधीर दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद। मंच पर विराजमान सच्चिदानंद की संतान, प्रभु प्रिय हीरों के हार, आपको विशेष सत्कार है, आप यहाँ पधारे, परंतु मेरे को मेरे सामने बैठे हुए जिस समय ज्योत जगाई तो मेरे मन में एक संकल्प आया, ये ज्योत जो हम जगा रहे हैं सेफ्टी के ख्याल से भी फिर ज्योत को बुझाएंगे, परंतु ये तो जागती ज्योत, लाइट हाउसेस माइट हाउसेस है, ये हमारे सामने जो बैठे हैं ये तो कुल के दीपक हैं, आपके माँ बाप आपको कुल की लाइट समझते हैं, कुल का दीपक समझते हैं, पर मैं आपको अपने हृदय की भावना बताती हूँ कि आप परम पिता परमात्मा के घर में, अपने घर में आए हैं, आप मेहमान नहीं आए हैं। तो आपको भी इसी स्नेह से, इसी भावना से ये चैतन्य लाइट न केवल आपके उसकी टेलीफोन की लाइट, मोबाइल की लाइट, परंतु आपकी इनर लाइट, उसके लिए जरूर जो दीदी ने ज्ञान का बीज बोया और कुछ वैल्यूज पर ध्यान दिलाया, सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास पहला, तो आत्मा की पहचान, आत्मा का ज्ञान, सबसे बड़ी बात है आत्मा अनुभव, और अनुभव पर्सनल चीज हो जाती है, वो अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है, उसमें नेचुरल विश्वास जागृत होता है, कोई डाउट लाना भी चाहते डाउट नहीं आता है, जैसे कि दोनों भाइयों ने अपना नाम बताया, उनको कितना भी कोई कहे आपका नाम ये नहीं है, मैं कहे नहीं मेरा नाम यही है। तो ऐसे ही जब आत्मिक ज्ञान है, ऐसा इतना तो टाइम नहीं है, शास्त्र पढ़े, पुस्तक पढ़े, वेद पढ़े, बेशक नाम तो त्रिपाठी चौपाठी द्विवेदी है, पर तो देखे भी नहीं है वेद, तो विद्या क्या है, सिर्फ ये जान लेना, समझ लेना और उस पर अभ्यास करना, क्योंकि टेस्ट करने के बाद ही तो टेस्ट का पता चलेगा। और अब तक हमने शास्त्र पढ़े, पुस्तक पढ़ी, वेद पढ़े, हमारे पूर्वजों ने पढ़े, हम रिपीट करते आए, तो अभी अगर मुझे वो तो उन्होंने बहुत सुंदर अनुभव किए और उसका वर्णन किया, परंतु मुझे अपना चेहरा देखना है तो मुझे अपनी आंख चाहिए, दर्पण तो मिल चुका है, मिल रहा है, परंतु इतना बड़ा दर्पण होते हुए भी यदि नेत्र में लाइट नहीं है तो आत्मदर्शन अपना दर्शन नहीं हो सकता, फेस का भी दर्शन नहीं हो सकता, और ये मेरी आंखें मेरे फेस का ही पार्ट है, मेरा ही अंग है, इतना सूक्ष्म डिब्बी है पर वास्तव में बड़ी मूल्यवान, पर इसमें भी इससे भी देखने वाली कौन, वो आपने सुना आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, और मुझ आत्मा में ये पांच शक्तियां, सब सात शक्तियां, आठ शक्तियां जगानी है, अगर मुझे उसको बढ़ाना है, चाहे निश्चय है, चाहे निर्भयता है, चाहे हिम्मत है, चाहे दृढ़ता है, चाहे विश्वास है, चाहे सत्यता है, चाहे सभ्यता है, स्वमान है, उसके लिए मुझे मानना होगा, जानना होगा और मानना होगा बराबर, ये मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है पर मैं आत्मा हूं, और मुझ आत्मा बीज में वो कैपेसिटी है इतना बड़ा वृक्ष उगाने की, क्योंकि मैं आज वृक्षपतिवार है, बृहस्पति डे है, सतगुरुवार डे है, तो सत्यता ये है कि एक हर एक आत्मा चैतन्य बीज है, आज सवेरे बीज लगाया तो भाव तो उगेगा, तब धरती तो जरूर चाहिए, पानी भी जरूर चाहिए, सूरज भी जरूर चाहिए, मौसम भी जरूर चाहिए, तो पांचों तत्वों की जैसे जरूरत है वैसे ही आत्मा के सब गुणों के साथ साथ आत्मा में कौन से कॉन्शियस में हमारे अंदर गुण आएंगे कि मैं वो चैतन्य ज्योति हूं। जैसे ज्योति जगती है तो तीन चीजें प्रकट हो जाती हैं उसमें, लाइट, उंगली रखो तो आग, और देखो फोटो खींचो तो फ्लेम। ज्योति को बुझाओ तीनों चली गई, ज्योत जगाओ तीनों प्रकट हो गए। ऐसे ही जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो मन, जिसमें मन के दृढ़ता हो, विश्वास हो, बुद्धि में निश्चय हो, संस्कार में श्रेष्ठता हो, तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की तीन शक्तियां अथवा एनाटॉमी है, एग्जिस्टेंस है। और आपका मन चाहा है कि आप यहां आए, आपको कोई घूमने के लिए नहीं आया माउंट आबू में, हॉलीडे पर भी आए हो तो होली बनने के लिए आए हैं। होली बनने के लिए आए हैं क्योंकि ये होलीएस्ट प्लेस है, माउंट आबू सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। इसीलिए ज्ञान कट में टुपका लगाने में ज्ञान गंगा बन, तो स्वयं ही ज्ञान गंगा और ज्ञान सरोवर में बैठे हैं मान सरोवर बनने के लिए, जिसमें टुबकी लगाते हैं। ऐसी कथा है कि अगर बगुला टुगली टुबकी लगाता है हंस बन जाता है, बूढ़ा टुबकी लगाता है यंग बन जाता है, गरीब टुबली लगाता है शाहूकार बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब ये है पर्सनैलिटी डिवाइन बन जाती है। तो इसीलिए अपने संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए भाई साहब ने कहा कि आप फूल हो, बराबर आप बगीचे के फूल हो, भगवान के गार्डन ऑफ अल्लाह के चैतन्य फ्लावर हो। और उस फ्लावर में ये विशेषता है शांति, ज्ञान मिस लाइट, शांति, प्रेम, पवित्रता और आनंद, ये पांचों ही क्वालिटी हैं। पर शांति हर एक मांगता है तो मांगने की जरूरत न रहे। मैं आपको सवेरे आपको मिला वो बीज जो सवेरे के प्रोग्राम में हमने गार्डन में बाहर किया, अभी मैं आपको एक 5 पेटल फ्लावर देती हूँ, यहां से फ्लावर डिसमेंटल नहीं करूंगी। और वो फ्लावर आप इस कॉन्शियस में आत्मा में लगाना ताकि वो खुशबू, बेशक कमल समान रहने की स्थिति दीदी ने बताई, बहन ने बताई, रोज गुलाब बनना है, खुशबूदार फूल बनना है, कांटों से ऊपर रहना है, सूर्यमुखी फूल बनना है ताकि सदा खिले रहे और हृदय में बीज रहे। परंतु आपको चैतन्य बीज स्वरूप बनने के लिए मैं एक 5 पंखुड़ियों पंखुड़ियों का, घर में आए ना मेहमान तो नहीं आए पर स्वागत तो करूंगी ना, तो 5 पंखुड़ियों के फ्लावर से स्वागत करना चाहती हूँ, वो जरूर स्वीकार करेंगे ना। और वो 5 पंखुड़ी का फ्लावर 5 पेटल फ्लावर है, पी ई ए सी ई, पी ई ए सी ई। तो आपके मन में वो सींचना क्या है, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्योर और पी फॉर पावरफुल। अपने अंदर वो दृढ़ता के साथ साथ शक्ति चाहिए, तो प्योरिटी, पीस एंड पावर, ये पी फेटल फ्लावर आप अपने फूल की अपने पास सदा फ्रेश रखे, सींचते रहें। दूसरी पेटल है ई, ई है एक्सरसाइज, सिर्फ रटने से नहीं या सिर्फ प्रेयर करने से नहीं, परंतु अंतर की एक्सरसाइज। मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा दिव्य स्वरूप हूं, देव कुल की हूं। वो दिव्यता जागृत होगी, बुद्धि दिव्य बनेगी तो निर्णय शक्ति से श्रेष्ठ होगी। तो यह ना एजुकेशन है, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये परिवार है। पहली बात आप अपने घर में आए हैं, परिवार में आए हैं, दूसरी बात आप विश्वविद्यालय में आए हैं, परमात्मा शिक्षक है, अभ्यास करने की शिक्षा देता है, एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अंदर वो क्वालिटी हेल्दी बना देगी। तीसरी पॉइंट, तीसरी पेटल है ए, ए मीन्स पीस इन एक्शन। जंगल में जाना नहीं है, पहाड़ों में जाना नहीं है, कहीं ढूंढना नहीं है, इंटरेक्शन, एक्शन इंटरेक्शन में वो हमारी जो क्वालिटी है, प्योरिटी की क्वालिटी, पॉजिटिव की क्वालिटी, पीस की क्वालिटी, हम वो नेचुरल फ्रेग्रेंस उसकी दे में। क्यों कि वो जो सूक्ष्म चीज है उसका फोटो नहीं होता। फ्लावर है गुलाब का, उसका फोटो खींचेंगे रंग दिखाई पड़ेगा रियल है या नहीं, टच करेंगे तो पता चलेगा, पर फ्रेग्रेंस तो आपको टच कर रही है, कहते बड़ी सुंदर खुशबू है। तो वो शांति प्रेम पवित्रता की सुगंध जो है वो इंटरेक्शन में जब आए, एक्शन में आए, तो रिजल्ट क्या होगा कि चैलेंजेस तो आएंगे, बराबर डरता रहे, निर्भयता रहे, साथ साथ अपने में हिम्मत रहे, निश्चय रहे, विश्वास रहे, वो तो जरूर बात है, परंतु वो तब होगा जब बुद्धि में ये ज्ञान फिट हो गया, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। तो मन PEAC, माइंड कूल, इंटेलेक्ट का क्लियर, और एटमॉस्फियर कूल, काम और क्लियर रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और करे जाएगा, ऑटोमेटिकली हिम्मत आएगी व्यवहार में आने की, इस परिस्थिति को फेस करने की, पर जेंटलनेस से। और फाइनल पैटल है ई, एवरीथिंग, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एनवायरमेंट ब्यूटी प्योरिटी पर्सनैलिटी, और उसका आधार है फिर से वही आध्यात्मिक शक्ति ई फॉर एनलाइटनमेंट। तो आप सभी यहां आए हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो इस बीज को जो मिला है ज्ञान का वो उसको सींचते रहें, और जरूर 3 दिन में अपने हृदय में वो सौगात लेकर के जाए, और ना केवल अपने पास रखे परंतु उसके वाइब्रेशंस दूसरे को भी दे। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, हम जरूर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अभी हमारे बीच हमारे आदरणीय मेहमान हैं, मैं निवेदन करता हूं हमारी दीदियों से कि हमारे जो स्टेज पर उपस्थित मेहमान हैं उन्हें गिफ्ट देकर सम्मानित करेंगे। हमारी बहनें गिफ्ट लाएंगे और दीदियों के द्वारा हमारे मेहमानों को गिफ्ट दिया जाएगा। आप सभी भी बैठे रहेंगे, आप सभी के लिए भी इस प्रोग्राम के बाद तुरंत गिफ्ट है। जो यहाँ से उठ के गए हैं वो भी अगर आवाज़ सुन रहे हैं वो भी हॉल में तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको गिफ्ट नहीं मिलेगी, आज ही मिलेगी, इसलिए आज ही ग्रहण करेंगे। कुछ सूचनाएं हैं, एक तो युवा प्रभाग की ओर से पॉजिटिव चेंज की हिंदी और इंग्लिश बुक बनी है, जिस किसी को परचेस करना हो तो यहाँ पीछे गैलरी में, हार्मोनियम के पीछे गैलरी में आपको मिलेगी, वहां से परचेस कर सकते हैं। सभी के लिए जो मॉर्निंग मेडिटेशन, उसको अमृत वेला योग कहते हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन, वो 4 बजे से इसी हॉल में होगा, तो आप सभी सवेरे 4 बजे जरूर पधारिए। सभी अपने तालियों के साथ हमारे मेहमानों का धन्यवाद भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। अभी फिर से ध्यान देंगे कि अभी प्रोग्राम के बाद तुरंत आपको यहीं पे गिफ्ट मिलेगी, तो गिफ्ट लेके ही आप यहां से प्रस्थान करेंगे। लफ्जों से शुरू हुई थी ये मुलाकात, रोहतक पहुंची हर एक बात, अब विदा का वक्त है पर एहसास बचे। दीदी हमारे बीच में से विदाई ले रहे, सभी हाथ हिलाकर दीदी का वेव करेंगे, विदाई देंगे। आदरणीय सुदेश दीदी जी बैठेंगे। चलो, लफ्जों से शुरू हुई थी ये मुलाकात, रोहतक पहुंची हर एक बात, अब विदा का वक्त है पर एहसास बचेगा, हर दिल में ये सम्मेलन खास रहेगा। तो अभी आभार विधि के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे युवा प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन प्राता आत्म प्रकाश जी। प्राता आत्म प्रकाश जी 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है और पिछले 50 वर्षों से यहां ब्रह्मकुमारीज हेडक्वार्टर में तीनों स्थान पांडव भवन आप वहां विजिट भी करेंगे, जो मूल स्थान है एक ज्ञान सरोवर और एक शांतिवन, तीनों कॉम्प्लेक्स में जो प्रसाद डिपार्टमेंट है, प्रसाद बनता है, प्रसाद डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी प्राता आत्म प्रकाश जी है। प्राता जी ने अभी तक लगभग 100 देशों में भ्रमण किया है और युवा सेवा और आध्यात्मिक सेवा का लाभ सभी को दिया है। अनेक प्रकार के टीवी रेडियो पे इंटरव्यूज आदि आते रहते हैं, यूट्यूब चैनल भी प्राता जी का है, उसमें से भी बहुत सारे लेक्चर्स सब लोग प्रतिदिन सुनते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं प्राता आत्म प्रकाश जी को कि इस कार्यक्रम के आभार विधि प्रदर्शित करें। प्राता
ओम शांति। दोस्तों, मैं आपका जास्ती समय नहीं लूंगा, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला कहते हैं प्यारा जो शिव बाबा हैं उनकी प्रेरणा से आज का उद्घाटन सत्र सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, इसलिए उस प्यारे शिव बाबा का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हमारे जो प्यारे पिता से ब्रह्मा बाबा और हमारी सूक्ष्म दादियां सूक्ष्म रीति से हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनकी दुआओं से ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, उनका भी दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और आज के उद्घाटन सत्र में माननीय श्री डॉक्टर निरंजन पटेल जी वीसी एसपी यूनिवर्सिटी विद्यानगर से जो आए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बातें आप युवाओं के साथ की हैं। मैं समझता हूं उनके वक्तव्य में जो भी बातें आपने सुनी हैं वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेगी, इसलिए पटेल साहब को भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन सम्माननीय डॉक्टर ईशा अग्रवाल बहन जी बैठी है। मैं देख रहा था आप जब अनुभव अपना शेयर कर रही थी कि मैं बाबा की बच्ची बनी हूं तो जीवन में संतुलन करके आगे बढ़ रही हूं और बहुत ऊंचाइयों की ओर जा रही हूं, तो आपका जो सच्चाई से अनुभव आपके सामने रखा वो आपको बहुत प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो हम बहन ईशा जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में माननीय समाज सेवी श्री आलोक अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर अनुभव युक्त बातें हमारे सामने रखी, उनका भी निश्चित युवाओं को बहुत लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आलोक जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी सुदेश दीदी जी जो कार्यक्रम में आशीर्वचन देने के लिए पहुंची है, इस ज्ञान सरोवर के एकेडमी की जो निर्देशिका है, आदरणीय सुदेश दीदी जी ने आशीर्वचन भी दिए और बहुत सुंदर बातें बाप के साथ शेयर की। तो ये भी जो भी क्लियर बातें की है वो आप अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो अपनी प्यारी दीदी जी को भी बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। हमारी युवा प्रभाग की जो अध्यक्षा है वो इस युवा रिट्रीट की प्रेरणा स्रोत हैं, आधार मूर्त हैं। तो ऐसी परम श्रद्धेय हमारी चंद्रिका दीदी जी, उनके दिल में हमेशा यही भावना जागृत रहती है निरंतर कि युवाओं को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे उमंग उत्साह से भरपूर करूं और कैसे उनको अच्छी तरह से सकारात्मक दिशा प्रदान करती रहूं। तो ऐसी हमारी परम श्रद्धेय चंद्रिका दीदी जी के लिए भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने 5 बातें हमें बहुत सुंदर बताई है, वो भी हम अपने जीवन में अपनाएंगे, दीदी जी को हम आश्वासन देते हैं। साथ में हमारी राष्ट्रीय संयोजिका युवा प्रभाग की जो है आदरणीय कृति दीदी जी, उन्होंने ही सुंदर प्रोग्राम बनाने की रूपरेखा बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ऐसी सम्माननीय कृति दीदी जी को भी दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और खास आम नहीं, खास आम की सीजन तो वैसे चल रही है, लेकिन खास हमारी सभा में जो युवा सारे भारत से पधारे हैं, तो उन्होंने की प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाने के लिए उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजाएंगे और जोर से तालियां बजाएंगे, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, ये परमात्मा की अवतरण भूमि है। ऐसे भूमि पर आने के लिए पुण्य कर्मों की पूंजी की आवश्यकता होती है, वो आप सभी युवा भाई बहनों के पास हैं, इसलिए एक बार जोरदार और तालियां बजाएंगे। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कमेटी मेंबर्स जो अपना पूरा योगदान देते रहते हैं और उनके योगदान से हर प्रोग्राम बहुत सुंदर और सफल होता है, तो युवा कमेटी के हमारे जो मेंबर्स भाई बहनों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और उनको बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं। स्टेज कोऑर्डिनेटर हमारे जो जीतू भाई हैं, उन्होंने बहुत सुंदर मंच संचालन किया। तो आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं, इनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में गीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा हम सभी का जिन्होंने स्वागत किया, उन्हों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उद्घाटन सत्र को सफल बनाने के लिए जिन्होंने हमें ब्याज और बुक्स दिए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और कार्यक्रम के अंत में लाइट, साउंड और वीडियो डिपार्टमेंट और सभी विभाग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत मददगार बने हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों से भ्राताजी का धन्यवाद करेंगे।